आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनम है और आज हम लोग आपकी फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द रैट ट्रैप और इसे लिखा है सेल्मा लैगरलॉफ ने। तो चलिए सबसे पहले इसके ऑथर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सेल्मा लैगरलॉफ का जन्म 1858 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1940 में हो गई। वो एक स्वीडिश राइटर हैं, यानी वो स्वीडन को बिलोंग करती है और उनके बहुत सारे जो वर्क हैं, जो भी उन्होंने स्टोरीज नॉवेल्स लिखी हैं, वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में उसे ट्रांसलेट भी किया गया है। और वो अपनी स्टोरीज में एक यूनिवर्सल थीम रखती हैं और वो क्या है कि अगर कोई अच्छाई करेगा तो अच्छाई बढ़ेगी, ये उनकी यूनिवर्सल थीम है। और इस तरह से वो जो आपस की अंडरस्टैंडिंग होती है और जो भाईचारा है उसे वो प्रमोट कर रही हैं। सो ये स्टोरी जो है वो उस टाइम पे बेस्ड है जब स्वीडन में बहुत सारे आयरन के माइंस पाए जाते थे, बहुत सारा आयरन ओर था और हर जगह जो है वो माइंस ही माइंस थी। सो ये वहां के उस एरा में बेस्ड है और ये स्टोरी जो है वो थोड़ी सी फेरी टेल टाइप नरेटेड है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर के साथ शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन who went around selling small rat traps of wire. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. But even so, the business was not specially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond, who plods along the road, left to his own meditations. But one day this man had fallen into a line of thought, which really seemed to him entertaining. He had naturally been thinking of his rat traps, when suddenly he had struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its land and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork and so on. As anyone let himself to be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. The world had, of course, never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait. So, ye story jo hai, wo ek chuhe dani bechne wale ki hai. और वो ये चूहेदानी खुद अपने हाथों से बनाता था, उन मटेरियल से, वो कैसे, वो तार से, जो कि वो भीख मांग करके स्टोर्स में उसे वो मिलते थे, या फिर बिग फार्म्स यानी जो बड़े खेत होते हैं वहां से अगर उसे कुछ भीख मिल जाती थी तो वो उससे जो है अपना रैट ट्रैप बनाता था और बेचता था। लेकिन ऑफकोर्स अब हर दिन तो कोई चूहेदानी खरीदने से रहा, तो इस वजह से उसे अपने अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो है वो कभी कभी चोरी या फिर कभी कभी भीख मांग करके अपना पेट भरना पड़ता था। वो भूखमरी और गरीबी से उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि उसके जो सारे कपड़े थे वो बिल्कुल फट छिट चुके थे, उसके जो गाल थे वो अंदर चले गए थे। इसका क्या मतलब है कि वो इतना ज्यादा पतला था, इतना ज्यादा माल नरिश था कि उसके गाल जो है वो अंदर चले गए थे, उसका फेस डिफॉर्म हो चुका था और हम लोग उसकी आंखों में साफ देख सकते थे कि वो कितना ज्यादा भूख से तड़प रहा होता था। तो उसकी जो लाइफ थी वो काफी ज्यादा बोरिंग थी, कुछ था नहीं, और वो जो है वो एक वेगाबॉन्ड था। वेगाबॉन्ड क्या होता है, जिसका कोई ठिकाना नहीं होता है, एक बंजारे के जैसे, है ना। तो एक दिन बस वो ऐसे ही अपने जो थॉट्स, अपनी सोच में बस चले जा रहा था, तब उसे अचानक जो है ये थॉट स्ट्राइक किया। और वो थॉट क्या था कि ये पूरी दुनिया जो है वो एक्चुअली एक बहुत बड़ी सी चूहेदानी है, और जिस तरह से उसकी चूहेदानी में क्या होता है, जो चूहे होते हैं वो आकर के फंस जाते हैं, एक बेट हो जाता है। बेट मतलब होता है जो आप चारा देते हो, जैसे कि मछली पकड़ने के लिए आप उसमें चारा लगाते हो, बेट लगाते हो, तो उसी तरह से तो जिस तरह से हम लोग चीज को पोर्क को एक रैट ट्रैप एक चूहेदानी के अंदर रखते हैं सो दैट के क्या हो चूहा आए और हम लोग उसको उस रैट ट्रैप में बंद कर दें उसको वहां कैद कर लें, और सेम कॉन्सेप्ट जो है वो दुनिया के लिए भी एप्लीकेबल है। ये पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी सी चूहेदानी है और हम इंसान अपनी लालसा में आकर के उस चूहेदानी में फंस जाते हैं और इस दुनिया का शिकार हो जाते हैं। अब ऑफ कोर्स ये सारे थॉट उसके दिमाग में इस वजह से आते थे क्योंकि एक तो उसके पास ज्यादा कुछ करने को था नहीं, तो वो उसका दिमाग हर वक्त खाली ही रहता था और वो इस वजह से अपने आप को एंटरटेन रखता था इस तरह की बातें सोच करके। तो अपने खाली टाइम में उन चीजों के बारे में सोच रहा होता था या उन लोगों के बारे में सोच रहा होता था जो लोग इस दुनिया वाले चूहेदानी में फंस चुके हैं, जिन लोगों ने अपनी लाइफ जो है वो लालसा में आकर के एक चूहेदानी के अंदर गुजार डाली है। एंड ऑफ कोर्स उसके पास अपने खुद के भी रीजन थे, क्यों? क्योंकि आज तक किसी ने भी उसके साथ भलाई नहीं करी थी, तो वो बाकी लोगों के बारे में भी अपने हिसाब से बुरा ही सोचता था। वो हमेशा सोच रहा होता था कि देखो ये भी जो है वो चूहेदानी में फंस गया, और वो दूसरों के बारे में ये ओपिनियन रखता था कि जो अभी तक नहीं फंसे वो कोई बात नहीं, जल्दी वो लोग भी फंस जाएंगे क्योंकि हर किसी को इस दुनिया की चूहेदानी में फंसना तो जरूरी है, ये उसका थॉट होता था। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रडिंग अलोंग द रोड ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज बाय द रोड साइड एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड। इंस्टेड of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. Immediately, he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then, he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. Finally, he got out an old pack of cards and played cholis with his guests until bedtime. The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host has been a crofter at Ramsjo Iron Works and had worked on the land. Now that he was no longer able to do the day labor, it was his cow which supported him. Yes, that bossy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all the 30 ronror in payment. The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 ronror bills. These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. तो एक बार क्या होता है कि जब वो जंगल से गुजर रहा होता है तब उसने क्या देखा कि एक कॉटेज है, यानी एक छोटी सी झोपड़ी आप समझ लो वहां पे है, और उसने वहां का दरवाजा खटखटाया तो वहां का जो मालिक था उसने उसे अंदर बुलाया, और ये जो चूहेदानी बेचने वाला है उसको इसकी आदत नहीं थी क्योंकि हर लोग उसे जो है वो भगा देते थे, लेकिन इस झोपड़ी का जो मालिक था वो जो है एक बूढ़ा इंसान था जिसकी वाइफ भी नहीं थी, कोई बच्चा भी नहीं था, तो इस वजह से उसे काफी अच्छा लगा कि एक अपने स्ट्रेंजर के साथ अपनी जो तन्हाई है वो काट सकेगा वो। इसी वजह से उसने जल्दी से पोरिज है यानी खिचड़ी आप समझ लो खिचड़ी उसने चढ़ा दी, और फिर उसे खिचड़ी के लिए फिर ऑफर भी करा, फिर वो लोग दोनों ने खाया। और इनफैक्ट उसने क्या किया, उसने दोनों के लिए ही टोबैको रोल बनाया जो कि दोनों के सिगरेट्स के लिए इनफ था। फिर उन लोगों ने जो है वो ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स खेला, यानी उन लोगों ने साथ में मिलके कार्ड्स भी खेला और जॉलिस का गेम खेला। अब जॉलिस जो है वो एक स्पेशल गेम है जो कि स्वीडन के लिए खास है, तो उन लोग दोनों ने मिलकर के जॉलिस खेला और फिर जो है कहा कि ठीक है अब हम लोगों को सो जाना चाहिए। अब ये जो ओल्ड मैन था वो काफी ज्यादा जेनरस था, काफी गिविंग था, और उसने अपने खिचड़ी ही नहीं बल्कि अपने सारे राज भी जो है वो उसके साथ शेयर करे, और उसने क्या बताया कि वो काफी अमीर हुआ करता था जब वो रैम्सजो आयरन वर्क में काम किया करता था, लेकिन अब जो है वो बूढ़ा हो चुका है और अब वो दिन में जो है वो काम नहीं कर सकता है, इसी वजह से इसकी जो गाय है वो उसको सपोर्ट करती है, और इसकी गाय जो है वो इनफ मिल्क दे देती है जिससे ये स्मॉल स्केल जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है वहां उसको भेजे अपने गाय के दूध को, और वहां से उनको क्रीम एंड चीज का पैसे मिल सके। और उसने ये भी बताया कि पिछले महीने ही उसको 30 रॉन रॉर मिले हैं। अब रॉन रॉर जो है वहां की करेंसी है, तो उसको 30 रॉन रॉर मिले हैं। लेकिन ये जो स्ट्रेंजर था, ये जो रैट ट्रैप बेचने वाला था, इसको बिलीव नहीं हुआ कि सिर्फ इसकी गाय से इतने ज्यादा पैसे आ जाते हैं कि इसको 30 रॉन रॉर मिल गए। तभी उसको यकीन दिलाने के लिए वो बूढ़ा इंसान क्या करता है, वो बूढ़ा इंसान जहां उसने पैसे रखे होते हैं वो पैसे उसको उसके सामने 3 10 10 के रॉन रॉर दिखाता है कि देखो मेरे पास अभी भी ये पैसे हैं। और फिर दिखाने के बाद जो है उसको वापस उसी पाउच में रख देता है जहां से उसने पैसे उठाए थे। द नेक्स्ट डे बोथ मेन गॉट अप इन गुड सीजन। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड thereupon each went his own way. But half an hour later, the rat trap peddler stood again before the door. He did not try to get in, however. He only went up to the window, smashed a pane, stuck in his hand and got hold of the pouch with the 30 ron rod. He took the money and thrust it into his own pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway but must run off the road into the woods. During the first hours, this caused him no difficulty. Later in the day, it became worse, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. He tried, to be sure, to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. Now his own turn had come. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. The whole forest, with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. So, अभी जो है, क्या हुआ? Next morning, ये लोग अपना सो वो गए, फिर जब अगली सुबह उठे, तो जो वहाँ का बूढ़ा इंसान था, जिसका घर था, वो जाता है और अपने गाय से दूध निकालने लगता है। और जो चूहेदानी बेचने वाला था, वो इस वजह से उठ जाता है, क्योंकि अगर जब घर के मालिक ही उठ गए तो उसका हक नहीं बनता सोने का। फिर ये लोग जो है एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। लेकिन जब आधा घंटा बीत गया था उसे वहां से गए हुए, तब जो रैट ट्रैप बेचने वाला था वो वापस से उस घर में आता है, लेकिन वो मेन गेट से नहीं आता है। वो क्या करता है कि वो खिड़की का शीशा तोड़ता है और वहां पे जो बैग टंगा हुआ था जहां से उसने 30 रॉन रॉर देखे थे, वहां से वो 30 रॉन रॉर ले जाता है और अपने पॉकेट में डाल करके वहां से चलता बनता है। लेकिन उसे डर था कि अगर वो हाईवे पकड़ेगा तब जो है कोई भी हल्ला मचा सकता है कि उसके घर चोरी हो गई है एंड ये पकड़ा जा सकता है, और इसी वजह से वो जंगल का रास्ता ले लेता है। तो अब जंगल में चलते चलते उसे पहले तो लगता है कि हाँ चलो मैं कितना स्मार्ट हूं, मैंने इसके घर से पैसे भी चुरा लिए और अब लोग जो है मुझे मेन रोड पर ढूंढ रहे होंगे, लेकिन मैं तो यहाँ जंगल के रास्ते निकल गया हूं। लेकिन बाद में जाकर के उसको पता चलता है कि वो एक्चुअली उस घने जंगल में फंस चुका है और वो तब से एक ही जगह पे बस इधर उधर भागे जा रहा है। और तभी उसे ये बात रियलाइज होती है कि जो उसने दुनिया के बारे में सोचा था कि जो पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है, एक चूहेदानी है, वो खुद जो है अब उस चूहेदानी में जाकर के फंस चुका है, क्योंकि उसने वहां पे लालच दिखाई और उस घर से उसने पैसे चुरा लिए थे। इट वॉज लेट इन दिसंबर। Darkness was already descending over the forest. This increased the danger and increased also his gloom and despair. Finally, he saw no way out and he sank down on the ground, tried to death, thinking that his last moment had come. But just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard regular thumping. There was no doubt as to what that was. He raised himself. Those are the hammer strokes from an iron mill, he thought. There must be people nearby. He summoned all his strength, got up, and staggered in the direction of the sound. The Ramshaw Ironworks, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill, and forge. In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal, which led to a large inland lake. And in the wintertime, the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal craters. During one of the long dark evenings, just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. Every now and then, one of them got up to stir the glowing mass with the long iron bar, returning in a few moments, dripping with precipitation, though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. All the time, there were many sounds to be heard in the forge. The big bellows groaned and the burning charcoal cracked. The fire boy shoveled charcoal into the maw and the furnace with a great deal of clatter. Outside roared the waterfall and a sharp north wind whipped the rain against the brick-tiled roof. It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. So, yahan pe, ab jab wo buri tarah se phas chuka tha, उसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. अब क्या हो गया था, इट वॉज लेट इन दिसंबर. दिसंबर में हमें पता है कि ये क्या होता है, विंटर टाइम होता है. और अब जो है उसने सोच लिया कि अब मैं यहाँ से कभी भी निकल नहीं पाऊंगा और मैं अब यहीं मर जाऊंगा. फिर वो क्या करता है, फिर वो जमीन में जाकर के लेट जाता है, ये सोचने लगता है कि अब कभी भी मुझे मौत आने वाली है. लेकिन अचानक उसे सुनाई देता है क्या, एक थम्पिंग वॉइस सुनाई देती है. तभी जो है उसे लगता है कि ये आवाज तो मैं पहचानता हूँ और ये उन हथौड़ी की आवाज है जो कि एक आयरन मिल से आती है. तभी वो समझा कि अच्छा, अगर यहाँ से आयरन मिल की आवाज आ रही है, इसका मतलब कि यहाँ आसपास जो है वो इंसान भी होंगे. इसी वजह से उसमें जितनी भी ताकत थी वो उन सारी ताकत को समेट करके जहां से आवाज आ रही थी उस डायरेक्शन में वो चल जाता है. फिर वहां जाकर के देखता है कि वो एक्चुअली कौन सी मिल थी. वो वही रामशो आयरन वर्क्स थी जहां से जिसका पता जो है वो उस बूढ़े इंसान ने बताया था. पहले के जमाने में ये एक बहुत बड़ा सा प्लांट हुआ करता था जहां से जो है कहीं से आयरन निकल रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है. लेकिन जब समर टाइम होता था उस टाइम पे, तब क्या होता था कि बहुत सारे काम हो रहे होते थे, सारे आयरन निकल रहे होते थे. और ये सब क्या होता था, किस डायरेक्शन में निकलता था वहां का रास्ता, एक इनलैंड लेक के डायरेक्शन में. लेकिन अब जब विंटर टाइम में क्या होता था कि वहां पे थोड़ी गर्मी होती थी तो अक्सर जो विलेजर्स हैं वो वहां पे जाकर के बैठ जाया करते थे ताकि वो थोड़ी सी गर्मी ले सके. फिर उसने क्या देखा कि अभी क्रिसमस का टाइम आने वाला था और वहां का जो मास्टर स्मिथ था वो अपने हेल्पर्स के साथ जो है वो फॉर्ज यानी वहां का जो एरिया था वो इंडस्ट्री, वहां पे जाकर के वो बैठा था और टाइम टू टाइम जाकर के वो आयरन को चला देता था. क्यों, क्योंकि वहां पे पिघल रहे थे. और जो कोयला डालने वाला था वो भी क्या कर रहा था, वो हर थोड़े देर बाद जो है वो जल्दी से कोयला भर रहा था उस भट्टी में ताकि वो भट्टी गर्म रहे, आयरन पिघला सके. ये सारी चीजें जो है वो काफी ज्यादा आवाज कर रही थी. और इस इंडस्ट्री के वो जो फैक्ट्री है उसके बाहर क्या था, फैक्ट्री के बाहर जो है वो वॉटरफॉल बहुत आराम से जो है वो बह रहा था काफी आवाज के साथ. और वहीं पे जो ठंडी हवाएं थी वो भी बारिश के साथ आ गई थी और वो क्या हो रहा था, अब बारिश होने लगी थी वहां पे. सो क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा शोर हो रहा था, इसी वजह से कोई भी जो भी वहां पे स्मिथ बैठा था यानी जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, लोहार लोग बैठे थे, उन लोगों ने ये नोटिस ही नहीं किया कि ये रैट ट्रैप बेचने वाला इंसान कब जाकर के उस फैक्ट्री के अंदर आ गया. और उन लोगों ने कब नोटिस किया, जब जो भट्टी के पास, फर्नेस के पास जाकर के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया था. Surely, it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of the fire. the blacksmiths glanced only casually and indifferently at the intruder. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty rag, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded in haughty consent without honoring him with a single word. The tramp did not say anything either. He had not come there to talk, but only to warm himself and sleep. In those days, the Ramshaw Iron Mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. And at this very moment, he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. The ironmaster did not follow the example of the blacksmiths who had hardly deigned to look at the stranger. He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. "But of course, it's you, Nils Olof. How you do look." The man with the rat traps had never before seen the ironmaster at Ramshaw and did not even know what his name was. But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of nor. Therefore, he did not want to undeceive him all at once. "Yes, God knows things have gone downhill with me," he said. "You should not have resigned from the regiment," said the ironmaster. "That was the mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. Well, now, of course, you will come home with me." To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade, that, however, did not please the tramp. So, yahan pe jo hai, ab kya hota hai ki un logo ke liye, yani jo bhi wahan pe blacksmith the, jo kaam kar rahe the already wahan pe, उन लोगों के लिए एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज थी कि अक्सर वहां पे भटकते भटकते जो इस तरह के जो बंजारे लोग होते हैं वो आ जाते थे ताकि उन्हें थोड़ी सी गर्मी मिल सके, उस ठंडे से वो बच सके जो कि बाहर हो रखा था। तो जब जो रात्रा बेचने वाला था उसने पूछा कि क्या मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ रात के लिए, तो उन लोगों ने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि ये तो एक बहुत ही नॉर्मल सा सिनेरियो था जो अक्सर उन लोगों के साथ होता था। उन लोगों ने उसे कुछ बोला भी नहीं, बस इशारे से कह दिया कि हाँ चलो ठीक है। लेकिन उस टाइम पे वहां का जो आयरन मास्टर था वो काफी ज्यादा अच्छा था, है ना, जो सुपरवाइज कर रहा होता था, और वो जो है जाना जाता था किस लिए कि वो हमेशा ये कोशिश में लगा रहता था कि रैम्स जो आयरन वर्क से सबसे बेस्ट जो मटेरियल है वो ही बाहर जाए। और वो ही एक दिन अपने नाइट इंस्पेक्शन पे आता है तो सबसे पहली चीज वो क्या नोटिस करता है, वो उस रैट ट्रैप सेलर को नोटिस करता है कि वो इतने ज्यादा भट्टी के करीब जाके सो रहा था कि उसके जो रैक्स थे यानी उसके जो चीथड़े थे कपड़े के उससे वो स्टीम बाहर आ रही थी। एंड फिर उसने अपनी हैट उतार करके उसका क्लोजर लुक लेना चाहा कि आखिर ये इंसान कौन है, तब उसे लगा जैसे कि वो उसका पुराना जानने वाला है नील्स ओलफ, और वो क्या था, वो जो है एक्चुअली एक आर्मी मैन था। लेकिन जो असल में रैट ट्रैप बेचने वाला था वो नील्स ओलफ नहीं था। हो सकता है कि ये जो आयरन मास्टर है वो उसको गलती से कोई और समझ रहा था, नील्स ओलफ समझ रहा था। और उसने काफी अच्छे से बात करी, उसने कहा कि अरे तुम्हारी जो है ये हालत कैसे हो गई, तुमने अपने जॉब से रिजाइन क्यों किया, तुम तो रेजिमेंट में थे, तुम तो सेना में थे, क्या हो गया। तभी जो है उस रैट ट्रैप बेचने वाले को ये दिमाग में आया कि यार अगर ये मुझे ऑलरेडी कोई और समझ रहा है, मुझे इतनी इज्जत दे रहा है, तो मैं बुद्धू थोड़ी हूँ कि जाकर के इसको बताऊंगा कि नहीं 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 मैं कोई और हूँ। तो उसने भी उसी तरह से अपनी बातें बनाना शुरू कर दी कि हाँ वो मेरी जो है वो अचानक से मैंने रिजाइन कर दिया तो इस तरह से मेरी हालत खराब हो गई और अब मैं इस तरह से हो गया हूँ। तब फिर उस आयरन मास्टर ने क्या कहा कि चलो अब जो भी हो, जो भी हुआ सो हुआ, अभी तुम मेरे घर चल रहे हो। टू गो along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade, that however did not please the tramp. Yani wo jis tarah se itne acche se wo iron master us बंजारे को अपने घर लेकर के जा रहा था, ये जो है वहां के वर्कर्स को कुछ ज्यादा खास पसंद आया नहीं। No, I couldn't think of it, he said, looking quite alarmed. He thought of the 30 ronroer. To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. The ironmaster assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself here. He said, Elizabeth is dead, as you may already have heard. My boys are abroad, and there is no one at home except my oldest daughter and myself. We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a bit faster. But the stranger said no. And no, and again no, and the ironmaster saw that he must give in. It looks as though Captain Von Stahl preferred to stay with you tonight, Jernstorm, he said to the master blacksmith and turned on his heel. But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word. It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge and a new guest came in. But this time it was not the ironmaster. He had sent his daughter apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. She entered, followed by a valet carrying on his arm a big fur coat. She was not at all pretty but seemed modest and quite shy. In the forge, anything was just as it had been earlier in the evening. The master blacksmith and his apprentice still sat on the bench, and iron and charcoal still glowing in the furnace. The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes. As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. The man was evidently used to sleeping with one eye open. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. So, अब जो है, जो आयरन मास्टर वो क्या कहता है, उसे लगता है कि ये जो है उसका पुराना दोस्त है और वो जब उसे अपने घर इनवाइट करता है तभी जो है वो रैट ट्रैप बेचने वाला वो क्या कहता था कि नहीं नहीं मैं नहीं आ सकता, आई डोंट थिंक सो कि मुझे जो है तुम्हारे घर आना चाहिए, क्योंकि उसे अब डर लग रहा था कि जो उसने अभी अभी चोरी करी है जिन पैसों की, वो जो है जाकर के अपने आप को एक ऐसे घर में पेश कर दे जहां पे ऑलरेडी इनके कनेक्शंस क्या है, पुलिस से हैं, आर्मी से हैं, तो ये तो ऐसा होगा जैसे अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारना। तो वो जो है वो बिल्कुल मना कर देता कि नहीं नहीं मैं तुम्हारे घर कैसे आ सकता हूँ, क्योंकि ऐसे भी जो है उसे क्या चाहिए था, उसे कुछ और नहीं चाहिए था सिवाय इसके कि बस एक सोने के लिए रात भर जगह मिल जाए। लेकिन आयरन मास्टर को वहां पे क्या लगता है कि वो जिस हालत में भी है, बिल्कुल फटे चित्रे हालत में, उसे लगता है कि वो उसे लेकर के काफी शर्मिंदा है और इसी वजह से कहता है कि देखो मेरा घर जो है वो काफी ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही घर है, और जो एलिजाबेथ है यानी उसकी वाइफ जो है वो मर चुकी है और जो मेरे बेटे हैं वो बाहर हैं, बस मैं और मेरी बड़ी बेटी जो है मेरे घर पे रहते हैं। और इनफैक्ट हम लोग दोनों ये सोच ही रहे थे कि इस क्रिसमस पे हमारे साथ कोई सेलिब्रेट करने वाला है नहीं, तो हमें अच्छा लगेगा अगर तुम इस बार हमारे साथ चलोगे, क्रिसमस साथ मनाओगे, सो दैट जो हम लोग खाना बनाए वो हम लोग मिल करके एंजॉय कर सकें। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उसने मना कर दिया, और बार बार आयरन मास्टर के कहने के बावजूद वो हर बार जो है उसको बहुत ही पोलाइटली मना कर देता था। तभी जो है वो अपने ब्लैक स्मिथ यानी अपने एक लोहार से जोक करता है और क्या कहता है कि मुझे लगता है कि कैप्टन वॉन स्टाल तुम्हारे साथ ही रात गुजारना चाहते हैं। एंड वॉन स्टाल क्या है, वो एक्चुअली जिसे वो समझ रहे हैं कि जो चूहेदानी बेचने वाला है वो कौन है, कैप्टन वॉन स्टाल है, लेकिन एक्चुअली वो बस एक ऑर्डिनरी इंसान था। तभी जो है ब्लैक स्मिथ जो है उसे लगता है कि जरूर दाल में कुछ काला है, ये इंसान जरूर कुछ छुपा रहा है, और जो आयरन मास्टर होता है वो वहां से हंसते हंसते चला जाता है। लेकिन थोड़े देर बाद जो है एक गाड़ी आके रुकती है और वहां कौन निकलता है, वहां पे आयरन मास्टर की बेटी आती है, और जो बाकी जो वहां के लोग थे उनके लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, ये तो रोज का ही काम था, तो तो वो उसकी बेटी भी जो है वो अक्सर आते जाते रहती थी, और वो बेटी कैसी थी, काफी ज्यादा शर्मीली थी। तो अब क्या होता है, उसने आयरन मास्टर ने एक्चुअली अपनी बेटी को वहां पे भेजा होता है कि हो सकता है कि शायद वो उसकी बेटी की बात सुन करके जो रैट ट्रैप बेचने वाला है वो उनके घर आ सके। तभी जो बेटी होती है वो कैसे आती है, अपने एक अटेंडेंट के साथ, अपने एक नौकर के साथ आती है, और वो नौकर ने बड़ा सा फर कोट अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। तो अब जो ब्लैक स्मिथ वहां पे पैर पसार के सो रहा था, उसने क्या, वो उसकी आदत थी एक आंख खोल के सोने की, और जैसे ही उसने देखा कि एक लड़की उसके सामने आके खड़ी है, वो बहुत ही डर करके उठ के बैठ गया। सो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी अपनी स्टोरी यहीं पे रोकेंगे, और इसके आगे की स्टोरी मैं आपको इसके आगे आने वाले पार्ट्स में बताऊंगी। तो तब तक मैं आपको बोलूंगी, हम लोग ने जहां तक ये चैप्टर कर लिया है, आप लोग इस चैप्टर को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ें, ताकि आप लोग इस चैप्टर को अच्छे तरह से समझ पाए, और इसके आगे की कहानी मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। थैंक यू।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।